जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय हो जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय किशोरानंदन जय गज जन रंजन यशोदा जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज जय हो जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज जय हो जय हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज राधा नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदिस डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय, श्रीमती तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की जय, श्री बलराम रास यात्रा महामहोत्सव की जय, श्री कृष्ण वसंत रास महामहोत्सव की जय, शिल वंशी वादन ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, शिल श्यामानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, आज चार त्यौहार हैं, आज चार त्यौहार हैं और पांचवा एक उत्सव चल रहा है एक महीने का। क्या है वो? हाँ, तुलसी शालिग्राम जलदान। तुलसी शालिग्राम जलदान की सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। ये जो महीना है, ये सूर्य के अनुसार ये जो महीना होता है, तो ये शालिग्राम जी के लिए विशेष गर्मी का होता है, क्योंकि उनका शरीर दूसरा है, हमारा शरीर दूसरा है, तो हमारे शरीर के अनुसार गर्मी का महीना दूसरा होता है, लेकिन शालिग्राम का जो शरीर है वो पत्थर का है, तो उस शरीर के अनुसार ये महीना सबसे ज़्यादा गर्म होता है। और उनकी गर्मी दूर एसी से नहीं होगी, एसी से, कूलर से, पंखा से नहीं होगी, उनकी गर्मी दूर कैसे होगी? जब उनके ऊपर बूंद बूंद पानी जो है गिरता है, तो उससे उनको उनकी गर्मी दूर होती है। और तुलसी महारानी के नीचे जब उनको रखा जाता है और तुलसी महारानी को उनका जल प्राप्त होता है, तो तुलसी महारानी भी प्रसन्न होती हैं। तो एक महीने के लिए ये नियम बनाया जाता है, जिनके घर में शालिग्राम है और तुलसी महारानी है, तो उनको बहुत अच्छा अवसर है शालिग्राम और तुलसी को प्रसन्न करने का, कि उन तुलसी के नीचे शालिग्राम को रख करके और एक ऐसा कलश स्थापित करें जिससे बूंद बूंद पानी गिरे शालिग्राम के ऊपर और शालिग्राम का जल तुलसी जी को प्राप्त हो। तो ये तुलसी शालिग्राम जलदान ये जो है बहुत बड़ा उत्सव है और बहुत उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। और अब ये जो पांच त्यौहार लिखे हुए हैं आपके सामने, लिखे हुए हैं पांच त्यौहार ना, तो सबसे पहले हम श्यामानंद प्रभु के विषय में चर्चा करेंगे। ये गौर गणोदेश नहीं, गौड़ी वैष्णव चरितामृत में से श्यामानंद प्रभु के विषय में कुछ बातें लिखी हैं। हालांकि इनका चरित्र बहुत विस्तृत है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इनकी विस्तार से चर्चा करें, तो इसलिए कुछ चर्चा जो इसमें लिखी है उसके मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। श्यामानंद प्रभु का जो है शुरू में जो जन्म हुआ था, तो इनका नाम था दुखी, इनका नाम जो है दुखी कृष्णदास था। क्यों दुखी कृष्णदास था? क्योंकि इनके जन्म के पहले अनेक इनके जो संतानें हैं, उनकी माता पिता की संतानें हैं, उनका देहांत हो गया, तो इसलिए इस बालक की रक्षा करने के लिए खराब नाम दिया जाता है। किसी बच्चे को जो है अगर बचाना है, रक्षा करना है, तो उसको खराब नाम दिया जाता है, तो दुखी नाम दिया, दुखी कृष्णदास। तो माता पिता ने इनका नाम रखा दुखी कृष्णदास। फिर बाद में हृदय चैतन्य से जब इनकी दीक्षा हुई तो इनका नाम पड़ा कृष्णदास। और वृंदावन में जीव गोस्वामी के अधीन गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए इनके साथ में दो और भक्त हुए, कौन कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य। तो तीन विद्यार्थियों का एक बैच जीव गोस्वामी ने जो है पढ़ाया था, एक कक्षा में तीन विद्यार्थी थे। तो गौड़ी गोस्वामियों के जो ग्रंथ हैं इनका अध्ययन किया। और नूपुर की जो घटना है वो बहुत ही विस्तृत है। जीव गोस्वामी के आदेश से कृष्णदास रोज प्रातः से भी पहले गलियों को बुहारते थे वृंदावन में, और विनित सेवा करते थे, विनम्र सेवा करते थे, कि वैष्णव लोग जब दर्शन के लिए मंदिरों में जाएंगे तो उनके पैरों को पीड़ा ना पहुँचे, कांटे या कंकण उनको ना लगें। एक दिन प्रातःकाल के समय एक सोने का सुंदर नूपुरन को मिला। जब ललिता विशाखा सखियाँ जब आईं और कृष्णदास से नूपुर मांगती हैं तो इन्होंने कहा कि ये नूपुर जो है वे उसी को देंगे जिसका नूपुर है, और नूपुर किसका था? राधा रानी का था। तो ये गोपियाँ कृष्णदास की आंखों पर पट्टी बांधकर इन्हें श्रीमती राधिका के समक्ष ले गईं। राधिका ने इन्हें अपने पाँव में नूपुर पहनाने की अनुमति प्रदान की। लेकिन ऐसे नहीं, राधा रानी भी ऐसे अपने पैर में नूपुर नहीं पहनाने की अनुमति दे सकती हैं किसी पुरुष को। तो इनका तो पुरुष का शरीर था, तो राधा रानी ने आज्ञा दी, वृंदा देवी को आज्ञा दी कि इसको जो है मेरे कुंड में ले जाओ और मेरे मंत्र का जाप कराओ। तो राधा मंत्र का जाप किया और राधा कुंड में जैसे स्नान किया तो इनको शरीर प्राप्त हो गया कनक मंजरी का। कनक मंजरी का जो शरीर प्राप्त हुआ और इस शरीर से फिर राधा रानी ने अपने पैर में नूपुर बांधने की आज्ञा दी थी। और राधा रानी ने प्रेम से उसी नूपुर के द्वारा जो है कृष्णदास के माथे में को निशान अंकित कर दिया, नूपुर का निशान अंकित कर दिया। तो इस प्रकार से कृष्णदास के माथे में नूपुर का निशान स्थायी रूप से बन गया। और जीव गोस्वामी ने प्रमोदित होकर के सौभाग्य, इनका इतना सौभाग्य था, सौभाग्य से प्रमोदित होकर के इनका नाम दिया श्यामानंद। वैसे तो श्यामानंद नाम भी ललिता सखी ने ही दिया था। ललिता सखी ने ही श्यामानंद इनको नाम दिया था। और आगे चलकर के बहुत बड़ी समस्या भी आई कि हृदय चैतन्य को जब पता चला कि मेरे शिष्य ने नाम भी बदल लिया है और तिलक का चिन्ह भी बदल लिया, तो फिर बहुत शिकायत हुई और उन्होंने जीव गोस्वामी के ऊपर दोष लगाया कि मैंने अपने शिष्य को आपके पास अध्ययन के लिए भेजा था और आपने उसको जो है नया नाम दे दिया और आपने उसको जो है तिलक का चिन्ह भी बदल दिया। तो जीव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि मैं उसका तो गुरु बन नहीं सकता, मैं तो उसका शिष्य बनने के भी योग्य नहीं हूँ। जीव गोस्वामी ने कहा और फिर जीव गोस्वामी ने कहा कि उसी ने मुझे बताया कि स्वप्न में उसके गुरु ने उसे दर्शन दिया और गुरु ने ही उसे यह नया नाम दिया है। तो फिर इनके गुरु हृदय चेतन और ज़्यादा नाराज हुए, रुष्ट हुए कि मैंने स्वप्न में दिया तो उसने स्वप्न की बात सच्ची मानी जबकि मुझे सूचना भी नहीं थी और मुझे कुछ पता भी नहीं, तो ऐसा कैसे है कि स्वप्न की बात उसने सच्ची मान ली जबकि मुझे कुछ पता नहीं है कि उसको ये नया नाम मिला। तो फिर बहुत से जो गौड़ी वैष्णव आचार्य थे उनको ले करके कालना से जो है ये वृंदावन आए और फिर सब महंतों की सभा बैठी और उस सभा में जो है इन्होंने श्यामानंद प्रभु को बुलाया और कहा कि अब तुम जो है सच बताओ क्योंकि मैं तो तुम्हारा त्याग कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु नहीं रहा, तुमने इस प्रकार से अपना नाम बदला, अपना तिलक का चिन्ह बदला। तो फिर इन्होंने मतलब फिर ये बताया, इन्होंने फिर उस समय कहा कि आप मुझे दो मुहूर्त का समय दीजिए। दो मुहूर्त का मतलब है कितना, 48 मिनट का एक मुहूर्त है तो दो मुहूर्त कितना हुआ, 96 मिनट। 96 मिनट का समय दीजिए और मैं जो है उस समय हृदय चैतन्य ने कहा कि मैं तुम्हारा श्यामानंद नाम जो है तुम्हारे हृदय में जो लिखा हुआ है उसको धोता हूँ, तुम्हारे तिलक का चिन्ह भी धोता हूँ और अगर अपने आप आ जाए कि तुम्हारा नाम श्यामानंद लिखा हुआ और तिलक का चिन्ह आ जाए तो मैं मानूंगा कि हाँ सचमुच तुम्हें जो है ये तुम्हारा जो स्वप्न है ये सच्चा है। तो उस समय श्यामानंद प्रभु ने जो है ललिता जी ने जो मंत्र सिखाया था उस मंत्र के द्वारा उन्होंने अपना ये भौतिक शरीर छोड़ दिया, आध्यात्मिक शरीर से ये राधा रानी के स्थान में पहुंच गई और अपने कनक मंजरी के शरीर से पहुंच गई और वहां रोने लगी। राधा रानी ने पूछा कि क्यों रो रही हो, तो बताया कि मुझे तो जो है यहाँ आपकी कृपा से नूपुर का चिन्ह मिला था और श्यामानंद नाम मिला था और अभी मेरे जो गुरु महाराज है वो मेरे ऊपर प्रश्न लगा रहे हैं और सब वैष्णवों की सभा में अब ये बड़ी लज्जा की बात हो रही है मेरे लिए। तो राधा रानी ने सुबल को बुलाया जी इनकी समस्या ठीक करो। तो सुबल बोले कि मैं तो घोड़ेदास पंडित हूँ, तो इनके गुरु का गुरु हूँ। घोड़ेदास पंडित ने शरीर छोड़ करके सुबल सखा का रूप प्राप्त कर लिया था। तो राधा रानी से बोले कि मैं तो घोड़ेदास पंडित, तुम ये बता देना कि मेरे गुरु के गुरु आए थे गुरु के रूप में, यानी मेरे गुरु के गुरु जो घोड़ेदास पंडित हैं वो हृदय चैतन्य के रूप में मेरे गुरु के रूप में आए थे, उन्होंने मुझे ये नाम दिया। और तुम्हारा जो है ये जो तिलक जो धोया गया है वो जो है मैं मेरी कृपा से फिर से प्रकट हो जाएगा और नाम भी तुम्हारा प्रकट हो जाएगा। तो फिर जो है जब ये आए अपनी चेतना में आए, इन्होंने सब कुछ बताया, और हृदय चेतन ने जो धोया हुआ था इनका नाम श्यामानंद नाम वो फिर और अधिक चमकने लगा, दोबारा लिख गया, और नूपुर का चिन्ह भी जो दोबारा चमक गया और दोबारा आ गया। तो फिर सब ने जो है फिर इनकी सच्चाई की जो है प्रशंसा की। तो इस तरह से ये बहुत बड़े संकट से छूटे थे। तो आज श्यामानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है। फिर इसमें लिखा है कि हृदय चैतन्य के तरह भाव के कुछ समय बाद इन्होंने श्यामानंद को स्वप्न में दर्शन दिया और प्रचार कार्य करने के लिए कहा। किन्होंने? हृदय चैतन्य ने अपने प्रधान शिष्य रसिकानंद की सहायता से श्यामानंद ने गौर नित्यानंद की सेवा का उड़ीसा में सर्वत्र प्रचुर प्रचार किया। तो गौर नित्यानंद की पूजा नहीं होती थी, लेकिन इन्होंने ही फिर शुरू कराई गौर नित्यानंद की पूजा उड़ीसा में सर्वत्र। वृंदावन के राधा श्याम सुंदर और राधा दामोदर के मध्य स्थित मार्ग पर दूसरी ओर श्यामानंद की पुष्प समाधि है, जहाँ दिन रात कीर्तन होता रहता है। श्री श्यामानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महाभूतोत्सव की। इसके बाद बंसीवादन ठाकुर के विषय में सबसे पहले मैं इसी से पढ़ूंगा, गौड़ी वैष्णव चरितामृत से, और फिर कुछ अन्यत्र से। इसमें लिखा है बंसीवादना नंद ठाकुर या बंसीवादन ठाकुर, इनका आविर्भाव हुआ था उस समय जिस समय इनके माता पिता के घर में श्री चैतन्य थे और अद्वैत प्रभु अद्वैताचार्य और श्री चैतन्य देव दोनों इनके घर में थे। तो उस समय इनका जन्म लीला हो गई। श्रीमती विष्णु प्रिया देवी के तेरे भाव के बाद बंसीदास इनके महाप्रभु विग्रह को कोलाद्वीप ले गए। तो कोलद्वीप में, नवद्वीप में कोलाद्वीप है, कोलाद्वीप में जो धामेश्वर महाप्रभु हैं, तो ये वहाँ ले गए। कहाँ से? विष्णु प्रिया पूजा करती थी धामेश्वर महाप्रभु की, वहीं पर जहाँ योगपीठ है, वही उनका घर है। जब विष्णु प्रिया का तिरुभाव हो गया तो उस समय ये महाप्रभु धामेश्वर महाप्रभु को कहाँ पर ले आए? कुलद्वीप, इस समय नवद्वीप नगर कहलाता है वो। और श्री कृष्ण के एक विग्रह प्राणवल्लभ के साथ इनकी पूजा करने लगे। धामेश्वर महाप्रभु और श्री कृष्ण प्राणवल्लभ नाम के कृष्ण गर्चा विग्रह की पूजा करने लगे। वंशीवादन ने गौड़ी वैष्णव धर्म के व्यंजना करते हुए अनेक कविताएँ और गीत लिखे हैं, बहुत कविताएँ गीत लिखे हैं इन्होंने। ये बंसी के अवतार हैं, श्री कृष्ण के बंसी के अवतार हैं, अतएव बंसीवादन ठाकुर की जो कृतियाँ हैं इनके जो गीत हैं वो उसी प्रकार मधुर हैं। बंसी ध्वनि की तरह इनके गीत भी मधुर हैं। श्रीला बंसीवादन ठाकुर आविर्भाव तिथि महाभूतोत्सव की। गौर गुणोदेश दीपिका में लिखा हुआ है बंसी कृष्ण प्रिया या सीत सा बंसी दास ठकुरहा। श्री कृष्ण की प्रिय बंसी जो थी वो गौर लीला में बंसीदास ठाकुर के रूप में प्रकट हुई। तो ये प्रमाण गौर गुणोदेश दीपिका से। अब मैं कुछ ऐसी लीलाएं पढ़ के सुनाऊंगा जो कि बहुत अद्भुत हैं और जैसे कि होती हैं हम लोगों के साथ में होती हैं ये लीलाएं, तो आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से। ये घटना 4 अप्रैल 2015 की है। 4 अप्रैल 2015 को आज का ही दिन था, यानी बंसी वादन ठाकुर का आविर्भाव दिवस था। तो पिछले साल की ये घटना है। अमृत केशव प्रभु का नियम है कि मैं जिन जिन लीलाओं को लिखित रूप देता हूँ उन लीलाओं को यथाशीघ्र मेरे कमरे में आकर मुझे पढ़कर सुनाते हैं, और लेखन कार्य में यदि कोई त्रुटि हो तो अपनी ओर से उस त्रुटि को दूर करने के लिए सुझाव देते हैं। तो पिछले दिवस अर्थात दिनांक 3 अप्रैल 2015 के दिवस पर मैंने कुछ लीलाओं को लिखित रूप दिया था, जिनमें से एक लीला दिनांक 9 मार्च 2014 की भी थी, जिसके अंदर बंसी के चिन्ह की बात बार बार निकली थी। अब अमृत केशव प्रभु दिनांक 3 अप्रैल के दिवस पर जिस समय मेरे द्वारा लिखी हुई लीलाओं को पढ़ने के लिए आए, उस समय श्री कृष्ण उनकी बुद्धि को कुछ इस प्रकार मोहित किया कि अमृत केशव प्रभु ने बंसी के चिन्ह वाली उक्त लीला को छोड़कर अन्य सभी लीलाएं पढ़कर मुझे सुना दी। अब आज के दिवस पर मैंने जो अन्य लीलाएं लिखी थी उन्हें पढ़ते समय अमृत केशव प्रभु ने देखा कि पिछले दिन उन्होंने जो लीलाएं पढ़कर सुनाई थी उनमें से वे उस लीला को पढ़कर सुनाना भूल गए थे जिसमें बंसी के चिन्ह की बात बार बार आई थी। अतः अमृत केशव प्रभु ने आज के दिवस पर मेरे द्वारा लिखित लीलाओं के साथ उक्त लीला भी पढ़कर सुनाई। परंतु एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। आज बंसीवादन ठाकुर का आविर्भाव दिवस था। हमें समझना चाहिए कि हमारे वैष्णव कैलेंडर में बंसीवादन ठाकुर के आविर्भाव का जो उल्लेख है परंतु उनके तिरुभाव का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार बंसीवादन ठाकुर का स्मरण करने के लिए वर्ष में केवल एक ही दिन होता है जो आज का दिवस था। इसके अतिरिक्त उनके विषय में ये बात भी बताई गई है कि वे श्री कृष्ण की बंसी के अवतार हैं। अतः श्री कृष्ण ने आज के दिवस पर ही अमृत केशव प्रभु के द्वारा एक ऐसी लीला पढ़वाई जिसमें बंसी के चिन्ह की बात बार बार आई थी। श्री कृष्ण के मुख में जो बंसी रहती है उसी बंसी के प्रति श्री कृष्ण इतने स्नेहिल हैं कि जिस दिवस पर उस बंसी ने बंसीवादन ठाकुर के नाम से जन्म लिया उस दिवस पर श्री कृष्ण ने अमृत केशव प्रभु से एक ऐसी लीला पढ़वाई जिसमें बार बार बंसी शब्द का प्रयोग हुआ है। इस घटना के द्वारा श्री कृष्ण ने यह बात भी पुष्ट कर दी कि बंसीवादन ठाकुर श्री कृष्ण की बंसी के ही अवतार हैं। श्री कृष्ण की हरि बोल। श्री कृष्ण ऐसी अत्यंत अद्भुत लीला को समझकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल।
तो केशव भी बंसी बजा सकते हैं बार बार।
अब एक और लीला है।
बंसी की धीरे धीरे आवाज सुनाई दे रही
थी। एक और लीला है। श्री कृष्ण अपने हाथ से बंसी गिराई। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। आज मेरे कमरे में श्रीमान पंकज इस पुस्तक को खोलकर दिनांक 4 अप्रैल 2015 की एक ऐसी लीला सुनाने लगे जिसमें श्री कृष्ण की बंसी की बात बार बार आई थी। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। श्रीमान पंकज जिस समय उस लीला में बंसी शब्द को बार बार बोल रहे थे उस समय मेरे कमरे में जो मंदिर है उसमें स्थित मधुसूदन नाम की अर्चा विग्रह ने सभी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए अपने हाथ की बंसी गिरा दी। अरे उस समय खट की आवाज हुई। जब बंसी गिरी तो खट की आवाज हुई जिससे सभी भक्तों को पता चला कि श्रीमान पंकज के मुख से बंसी की बात सुनकर श्री कृष्ण के मधुसूदन नामक अर्चा विग्रह ने अपने हाथ की बंसी गिरा दी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने संकेत किया कि श्री कृष्ण अपने बंसी के प्रति अत्यंत स्नेहिल हैं। श्री कृष्ण के द्वारा हुई ऐसी अत्यंत अद्भुत लीला को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। अब श्री कृष्ण बसंतरास। तो श्री कृष्ण बसंतरास की जो लीला मैं सुनाऊंगा तो ये रासलीला उस समय की है जब द्वारका में भगवान थे, जब कृष्ण द्वारका में थे और महाराज उग्रसेन ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था और अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है वो ब्रजमंडल में भी पहुंचा और नंद महाराज को जब पता चला कि कृष्ण के जो पौत्र अनिरुद्ध हैं वो इस घोड़े की रक्षा करने के लिए आ रहे हैं सेना के साथ, तो उन्होंने घोड़े को आदरपूर्वक बांध लिया और उस समय कुछ कारणवश कृष्ण भी थे उस सेना में, तो फिर कृष्ण सब ब्रजवासियों से मिले, नंद महाराज से मिले, माता यशोदा से मिले, और फिर उन्होंने रासलीला की थी। तो ये जो रासलीला है ये बहुत विस्तृत है, तो मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ अंश उसका पढ़ूंगा जिसमें कृष्ण ने बंसी बजाई। चूँकि आज बंसी वादन ठाकुर का आविर्भाव दिवस है, तो कृष्ण ने बंसी बजाई, तो उस घटना का वर्णन मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। तो ये घटना उस समय की है जब रास मंडल में श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए और राधा रानी मूर्छित पड़ी हैं। राधा रानी मूर्छित पड़ी हैं और गोपियाँ रो रो करके भगवान की स्तुति कर रही हैं कि वे दर्शन दें। तो गर्ग जी सुना रहे हैं ये कथा, राजा किसको, नहीं बहुलास को नहीं सुना रहे हैं, प्रतिभा, राजा प्रतिभाव को सुना रहे हैं ये कथा। गर्ग मुनि बोले, हे राजन, श्री कृष्ण को अपने बीच देखकर वे सभी गोपियाँ हर्षपूर्वक उठ खड़ी हुईं और सारा दुख भूलकर उनकी जय जयकार करने लगीं। वहाँ राधा को मूर्छित पड़ी देखकर गोपियों ने प्रार्थना की, तो श्री कृष्ण ने उन्हें सचेत करने के लिए अपनी बंसी बजाई। ततः कृष्णस्य वचनात् सद्यश्चन्द्राननः सखी चन्द्रावलिं प्रत्युवाच प्रसन्ना कृष्ण वेणुना। तब भी राधा नहीं उठी तो श्री कृष्ण ने बारम्बार उन्हें वेणु गीत सुनाया। सो सुनकर राधा उठी, कृष्ण के वेणु गीत को सुनकर के राधा उठी, किंतु श्री कृष्ण के वियोग का दुख याद आते ही श्री कृष्ण के देखते देखते पुनः मूर्छित हो गई। दृष्ट्वा समूर्छिताम राधाम गोपे भी प्रार्थितो हरि चैतन्यार्थे ब्रजे तत्र चकार मुरलीरवम नोथिताम राधिकाम दृष्ट्वा श्री राधा वल्लभो हरि तस्य संश्रावयामास वेणुगीतम पुनः पुनः। तब श्री कृष्ण की बंसी से प्रसन्न चंद्रानन नाम की सखी राधा रानी से बोली। चंद्रानन ने कहा, हे राधे, तुम्हारे मान से रूठकर जो श्री कृष्ण चले गए थे, जैसे एक युग के बाद वे पुनः आए हैं, सभी क्लेशों का नाश करते हुए उन्हीं देव के नंदन ने तुम्हारे निकट बंसी बजाई है। कृष्ण चंद्र पुरा निर्गतो मानतो यागता सोपि राधे युगान्ते पुनः नाशयन सर्व दुखानि ते सन्निधौ संजगो वेणुना देव की नंदना। मृदंग का छुंग छुंग शब्द हो रहा है और रासलीला के आंगन में देवांगनाओं से सेवित देवी के नंदन ने ही बंसी बजाई है। छुंग छुंगे निनादम मृदंगे कलम वाद्यमाने सुरस्त्री जने सेविता रास रम्याम गणे नृत्य कृण माधवा संजगो वेणुना देव की नंदना। सुवर्ण के समान चमचमाता पीताम्बर धारण किए हैं, कौन, कृष्ण, और वैजयंती माला के भार से जिनका वक्षस्थल सुशोभित है, ऐसे भगवान ने नंद के वृंदावन में गोपियों के मध्य बंसी बजाई है। चारो चामी करा भासी वासा विभुर वैजयंती भरा भासी तोर स्थल नंद वृंदावने गोपिका मध्य गहा संजगो वेणुना देव की नंदना। सुंदरी चंद्रावली के नेत्रों से चुंबित गोपों गोपियों और गौओं के प्रिय कंस के वंश रूपी वन को भस्म करने वाले, कंस के वंश रूपी वन को भस्म करने वाले देव के नंदन ने इस समय बंसी बजाई है। चारो चंद्रावली लोचना चुंबितो गोप गोवृंद गोपालिका वल्लभा कंस वंशाटवी दाह दावा नलह संजगो वेणुना देव की नंदना। बालिकाओं की तालियों की ताल लीला में आसक्त होकर जिन्होंने अपने भ्रुकुटी का विभ्रम दिखाया है और गोपियों के गीत पर जिनका ध्यान लगा हुआ है, उन्हीं देव की नंद ने बंसी बजाई है। बालिका तालिका ताल लाला लया संग संदर्शित भ्रूलता विभ्रमा गोपिका गीत दत्ता वधाना स्वयं संजगो वेणुना देव की नंदना। किरीट बाजूबंद किंकिणी और कुंडल से विभूषित सुंदर नंद नंदन ने सबको आनंदित करते हुए तुम्हें प्रसन्न करने के लिए बंसी बजाई है। मौली मालांग दे किंकिणी कुंडलेर भूषितो नंदनो नंद राजस्य चाम प्रीतिकृत सुंदरो देवी प्रीत्या तव संजगो वेणुना देव की नंदना। जिन राधा रमण ने पारिजात वृक्ष उखाड़ कर सत्यभामा के आंगन में रोपा, उन गोपियों के समूह और देवांगनाओं के काम पूरक देव के नंदन ने बंसी बजाई है। पारिजातम समुद्रित राधावरो रूपयामास भामा भया दंगणे वल्लवी वृंद वृंदारिका कामुका संजगो वेणुना देव की नंदना। जिन्होंने ऋक्षराज जाम्बवान को पराजित करके शमंतक मणि प्राप्त की और उसे राजा उग्रसेन को प्रदान की, उन्हीं देव के नंदन ने बंसी बजाई है। ऋक्षराजम विनिर्जित नीत्वा मणिम संदो भीति वन भूमि नाथाय सोपिरा से समागत राशे स्वरो संजगो वेणुना देव की नंदना। गर्ग जी कहते हैं, राजन इस प्रकार वंशी वादक श्री कृष्ण की महिमा सुनकर प्रसन्न होकर राधिका उठ खड़ी हुई और श्री कृष्ण से लिपट गई। इति श्रुत्वा राधिका तो महिमाम वेणुवादिनः प्रसन्ना ही समुत्थाय परिरे भे प्रियम प्रिया। तब वृंदावन के स्वामी गोविंद वृंदावन के वृक्षों को देखते हुए वृंदावन निवासिनी राधा के साथ भ्रमण करने लगे। वृंदावन सो गोविंदो रे मे वृंदावने वने वृंदावन निवासिन्या पश्यन् वृंदावने द्रुमान। हे राजन, समस्त ब्रज बालाओं ने श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया जैसे बिजलियां मेघ को पकड़ लेती हैं। तथा कृष्णम च जगृहु सर्वतो ब्रज योषितः वर्षा काले नप श्रेष्ठ सौदामिन्यो यथा घनम। तब श्री कृष्ण ने जितनी गोपियां थीं अपने उतने ही रूप बनाकर उनके साथ यमुना जी के तट पर गए। यावती स्तत्र गोप्यश्चा तावन रूप धरो हरि यमुना पुलिनम राजन ताभि साकम समाययो। इससे स्तुतियों के समान सभी गोपियां बहुत प्रसन्न हुई और भगवान को बैठाने के लिए उन्होंने अपने वस्त्रों से आसन बनाया। बभूवर्मुदिता नार्यो यथाचा श्रुतिः पुरा स्वस्त्र कृष्णचंद्राय ह्यासनम ता अचीक्लिपन। हे राजन, गोपियों की भक्ति से प्रसन्न राधा रमण श्री कृष्ण राधा के साथ उस आसन पर बैठे। श्री राधा रमणस्तस्मिन् आसने सह राधया निस्सादय हो राजन ताभिर्भक्त्या वशीकृतः। तब भगवान ने उन्हें अपना वो रूप दिखाया जो त्रैलोक के मोहन रूप गोलोक में रहता है। गोलोके यादृशम रूपम दर्श्यामास चादृशम गोपी नाम राधया सार्धम कृष्णम त्रैलोक्य मोहनम। गोकुल के चंद्रमा श्री कृष्ण के उस परम अद्भुत रूप को देखकर गोपियां ब्रह्म आनंद में निमग्न हो गईं, अतः वे अपने आप को भी नहीं जान सकीं कि हम कौन है। दृष्ट्वा गोकुले चंद्रस्य स्वरूपं परमाद्भुतं स्वात्मानं नाविदन् गोप्यो ब्रह्मानन्देन निर्वृता। कुछ देर स्थल पर विहार करके गोपियों की भक्ति के वशीभूत भगवान श्री कृष्ण ने राधिका और अन्य गोपियों के साथ जल विहार करने के लिए यमुना के जल में प्रवेश किया। स्थले कृत्वा विहारम तो विवेश यमुना जलम ताभिर्भक्त्या वशीभूतो गोपी भी सह राधया। जैसे अप्सराओं के साथ इंद्र मंदाकिनी नदी में जल विहार करते हैं, वैसे ही कृष्ण सब गोपियों के साथ यमुना जी में जल विहार करने लगे। वाराम विहारम भगवान त्रिवि सार्धम चकार मंदाकिन्याम यथा सक्रो ह्यप्सरो भिर्वृतो दिवी। हे राजन, बिहार के समय माधव राधिका पर और राधा माधव पर जल्दी जल्दी जल के छींटे डालने लगी। माधवो माधवी राजन, माधवी माधवम जले, अन्योन्यम तो शिशि चतुः सलिले सलिले स्वरम। उस समय राधा के जुड़े और भगवान के केश पास से गिरे विविध रंग के फूलों से यमुना जी इस प्रकार शोभित हुई जैसे उन्होंने अनेक रंग के फूलों की बंधी पगड़ी पहन रखी हो। कबरी केश पाशाभ्याम प्रचुत है कुसुमेर बभौ, यमुना चित्र वर्णश्चा यथोष्णिं मुद्रिता नृपे। ये सौंदर्य देखकर विद्याधरियों और देवांगनाओं ने उन पर फूलों की वर्षा की। उस समय जल विहार से निवृत्त होकर वे जल से बाहर निकले और वहां से गोवर्धन पर्वत की ओर चले। विद्याधर्यो देव पत्न्या पश्चिम वर्षम प्रचक्रिरे, प्रसदन वस्त्रनि व्यस्ता मोहम प्राप्ता स्मरातुरा, अति कृष्ण वारी लीलाम कृत्वा वैलीले आयुतः, जलान निष्क्रम्य राजेन्द्र गिरिम गोवर्धनम ययौ। हे राजन, सभी उनकी सहचरी गोपियां भी उनके पीछे पीछे चली। उनमें से कोई सखी हाथ में पंखा लिए थी, कोई चमर चला रही थी, कोई तांबूल, कोई दर्पण, कोई आभूषण और कोई सखी फूलों की झोली लिए थी, कोई चंदन, कोई पूजा पात्र, कोई महावर, कोई सखी वस्त्र लिए थी, कोई सखी मृदंग, कोई कांस्य पात्र, कोई मुरज और कोई सखी हाथ में वीणा लिए थी, कोई हाथ में खड़ताल लिए थी, कोई गायन गा रही थी। उस समय ऐसा लगा कि छहों राग और 36 रागिनियां ब्रजबालाओं का रूप धारण करके वहां उतर आई हैं। काचित तांबूल हस्ताश्चा काचिन दर्पण वाहका, काचिन भूषण हस्ताश्चा काचिन कुसुम वाहका, काचित चंदन हस्ताश्चा काचिन भाजन वाहका, काचिन ध्यावद हस्ताश्चा काचिन नम्र वाहका, काचिन मृदंग हस्ताश्चा काचित कांस्य धराश्च वै मुरयष्टि धरा काचिन काचिन वीणा धरा परा। वे गोपियां पूर्व काल में राधा के साथ गोलोक से भारत आई थी। यहाँ श्री कृष्ण के समक्ष उन्होंने अपना नृत्य गान प्रस्तुत किया। बाद में मदन मोहन श्री कृष्ण ने इन गोपियों के बीच में जाकर नृत्य किया। अपनी बंसी से गीत गाते हुए उन्होंने तीनों लोक मोह लिए। विभिन्न प्रकार के वाद्य किंकणी कंकण और नूपुर से मिश्रित तुमुल निनाद सारे राष्ट्रमंडल में गूंज उठा। श्री कृष्ण के राष्ट्रमंडल को देखकर सभी देवता और देवांगनाएं मूर्छित हो गए। हरि बोल। चंद्रमा की चांदनी में चंचल श्री कृष्ण राधा के साथ चलते हुए बिजली युक्त मेघ के समान दिखाई दे रहे थे। उसी गोवर्धन पर्वत पर उन्होंने माला, महावर, काजल और कमल की पंखुड़ियों से राधा का श्रृंगार किया। राधायास्तत्र श्रृंगारम श्रृंगिर्यामक कज्जल चक्रे कमल पद्राद्यैर गिरो गिरिधरो महान। श्री राधा के बीड़े को भगवान खा गए और कृष्ण के दिए बीड़े को राधा बड़े हर्ष से खा गई। सती राधा ने हठात श्री कृष्ण के चबाए पान को लेकर भक्ति पूर्वक खा लिया। जब भगवान ने राधा के चबाए हुए पान की मांग की तो भयभीत राधा ने नहीं दिया और उनके चरणों में गिर पड़ी। हरि बोल। बसंत ऋतु से परिपूर्ण वृंदावन में श्री कृष्ण ने कामदेव के समान नाना प्रकार के श्रृंगार किए। वृंदावन हरिस्ताभिर वसंत ऋतु प्रपूरिते नाना प्रकारम श्रृंगारम सचकार मनोजवन। कुछ गोपियों ने श्री कृष्ण के अधरामृत का पान किया, कुछ ने भुजाओं में भर कर दृढ़ आलिंगन किया। गोपियों के स्तन पर लगा केसर छूटकर भगवान के शरीर में लग गया, जिससे वे सुवर्ण वर्ण के शोभित हो गए। भगवान का पूरा शरीर सोने जैसा हो गया। गोपियों के स्तन का केसर लग गया। ततस्तु कृष्णस्तु भगवान तथा कृष्णस्तु भगवान गोपी नाम कुछ कुंकुमे सुवर्ण वर्णो भूत्वा वह रेजे मदन मोहना। फिर गोपी वल्लभ कृष्ण ने कदली वन में गोपियों के साथ राज किया। हे राजन, हेमंत ऋतु की वह रात्रि लंबी लंबी रात्रि गोपियों के रास विलास के आनंद में क्षण भर के समान बीत गई। एवं हेमंत रजनी गोपी नाम रास मंडले व्यतीता क्षणवद राजन नित्यानंदे न तत्र वै। इस प्रकार रास करके श्री कृष्ण नंद जी के घर गए। रास संपन्न हो जाने पर राधा ब्रजभानु के घर गईं, बाकी गोपियां अपने अपने घर चली गईं। अथ नंदस्य सदनम रासम कृत्वा यो हरि ब्रजभानुपुरम राधा तथा गोप्यो गृहान ययुः। हे राजन, ब्रज के गोपों को इस रासलीला की खबर भी नहीं हुई, क्योंकि गोपों ने अपनी अपनी पत्नियों को अपने पास ही देखा। राधा माधव के श्रृंगार चरित को जो लोग पढ़ते या सुनते हैं, सुन रहे आप लोग तो सुनिए, नकल नहीं करना है इस लीला की, नकल नहीं करना है। राधा माधव के श्रृंगार चरित्र को जो लोग पढ़ते या सुनते हैं वे अंत में अक्षरधाम गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं। हरि बोल। एवं हेमंत रजनी गोपी नाम रास मंडले व्यतीता क्षण राजन नित्यानंदे न तत्र वै। अथ नंदस्य सदनम रासम कृत्वा यो हरि ब्रजभानुपुरम राधा तथा गोप्यो गृहान ययुः। न जानन्ति ब्रजे गोपा रास वार्ताम हरेरपि स्वान स्वान द्वारान स्वपार्थस्थान मन्यमानान नृपेश्वर। इदं श्रृंगार चरितम राधा माधवयो परम ये पठन्ति ते ब्रजस्यन्ति चाक्षरम्। अब एक त्योहार रह गया है, कौन सा? बलराम रास यात्रा। तो इसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। हालांकि ये लीला श्रीमद् भागवत में भी है, लेकिन कुछ नए ढंग से गर्ग संहिता में भी लिखी है। तो ये कथा सुन रहे दुर्योधन बलदेव जी के विषय में, बलदेव जी की महिमा जो है दुर्योधन सुन रहे हैं अपने गुरु से। उनके गुरु हैं प्राट विपाक मुनि। दुर्योधन ने पूछा कि हे मुनि सत्तम, भगवान बलभद्र जी ने नाग कन्या गोपियों के साथ यमुना जी के तट पर कब विहार किया था? बलदेव जी की जो गोपियां हैं वो अलग ही यूथ है उनका, नाग कन्याएं हैं ये, इनका संबंध कृष्ण के साथ नहीं है। जो कृष्ण के साथ गोपियां संबंधित हैं उनका संबंध बलदेव जी के साथ नहीं है। तो बलदेव जी के साथ जो गोपियां हैं ये नाग कन्या गोपियां हैं, ये अलग ही हैं, इनका युद्ध अलग ही है। तो दुर्योधन पूछ रहा है कि कब यमुना जी के तट पर विहार किया। मुनि शार्दूल है भगवान बलभद्रो नाग कन्या फिर गोपी भी गदा कालिंदी कोले विजहार। प्राण विभाग मुनि बोले, एक समय की बात है ब्रज के बंधुओं को देखने की बलराम जी के मन में बड़ी उत्कंठा पैदा हुई। तब वे अपने ताल ध्वज से युक्त रथ पर सवार होकर द्वारका से निकले। बलदेव जी का रथ अलग है, कृष्ण का रथ है गरुड़ ध्वज, गरुड़ का चिन्ह है उनके रथ की ध्वजा में। किसके रथ की ध्वजा में? कृष्ण के रथ के गरुड़ ध्वज। और बलदेव जी के रथ की ध्वजा में ताल का चिन्ह है, तो ताल ध्वज वो रथ भी कहलाता है ताल ध्वज। तो ताल ध्वज संयुक्त रथ पर सवार होकर द्वारका से निकले और गौओं गोपालों और गोपियों से भरे गोकुल में जा पहुँचे। नंदराज और यशोदा जी भी बहुत दिनों से उन्हें देखने के लिए उत्कंठित थीं, अतः उन्होंने उनको हृदय से लगा लिया। फिर बलभद्र जी गौओं गोपियों और गोपालों से मिले और पूरे बसंत के 2 महीने उन्होंने वहाँ निवास किया। आज चैत्र पूर्णिमा है और बसंत ऋतु 2 महीने की होती है। कौन कौन से 2 महीने हैं? चैत्र और बैसाख। तो आज का जो दिन है वो बसंत का बिल्कुल बीच का दिन है, चैत्र पूर्णिमा। तो बलदेव जी 2 महीने रुके चैत्र और बैसाख के महीने। पहले जिन नाग कन्याओं के गोपी होने का वर्णन आ चुका है उन्होंने गर्गाचार्य जी से बलभद्र जी का पंचांग प्राप्त करके उसे सिद्ध किया। बलदेव जी को प्राप्त करने के लिए, पति रूप में प्राप्त करने के लिए नाग कन्या गोपियों ने गर्ग जी से बलदेव का पंचांग प्राप्त किया और उसको सिद्ध किया। उसी के प्रभाव से बलभद्र जी ने प्रसन्न होकर कालिंदी के तट पर उनके साथ रास मंडल में रास क्रीड़ा की। उस दिन चैत्र की पूर्णिमा थी। आज है ना, आज चैत्र पूर्णिमा है। तो आज की ये घटना है। अरुण वर्ण के पूर्ण चंद्र उदित होकर सारे वन को अपने रंग बिरंगी किरणों से रंग रहे थे। चंद्रमा कैसा था, कभी देखा ऐसा? पूर्णिमा का चंद्रमा तो हमेशा देखते हैं, लेकिन हाँ अरुण वर्ण का चंद्रमा है और लाल किरणों से पूरे वन को जो है रंग रहा है चंद्रमा। अथ च या नाग कन्या पूर्वोक्तस्ता गोप कन्या भूत्वा बलभद्र प्राप्त्यर्थं गर्गाचार्यात् बलभद्र पंचांगं गृहीत्वा तेनैव सिद्धा बभूवुः। ताभिर्बलदेव एकदा प्रसन्ना कालिन्दी कूले राशिमण्डलं समारेभे तदैव चैत्र पूर्णिमायां पूर्णचंद्रमो ऋणवर्णः संपूर्णं वनं रञ्जयन् विरेजे। शीतल पवन कमल के मकरंद और पराग को लिए सर्वत्र मंद गति से प्रवाहित हो रहा था। आनंददायिनी यमुना अपने चंचल लहरियों से निर्मल तट को व्याप्त कर रही थीं। कुंजों की प्रांगण भूमि विविध निकुंजों से सुशोभित और चमचमाते सुंदर पत्तों और फूलों के पराग से आवृत था। मोर और कोयल मधुर स्वर में बोल रहे थे और मधुकरों की मधुर ध्वनि से मुखरित ब्रजभूमि अत्यंत शोभा पा रही थी। शीतला मंदयाना कमल मकरंद रेणु बृंद समृता सर्वतो वाय वह परिवभु कलिंद गिरि नंदिनी चल लहरी फिर आनंद दायिनी पुलिनम विमलम ह्याचितम चकार तथा च कुंज प्रांगण निकुंज पुंज स्फुर ललित पल्लव पुष्प परागैर मयूर कोकिल पुंस कोकिल कूजितैर मधुप मधुर ध्वनि फिर ब्रजभूमिर भाजमाना बभूव। बलराम जी के पैरों में नूपुर की मधुर ध्वनि हो रही थी। चमकती हुई मणियों के कड़े करधनी केयूर हार किरीट और कुंडलों से भी अलंकृत थे। उनके मुख पर कमल दल की छटा छा रही थी। नीलांबर धारण किए हुए थे, नीलांबर मतलब नीला वस्त्र धारण किए थे और कमल दल के समान नेत्र थे। ऐसे बलदेव जी यक्षिणियों के साथ यक्षराज की भांति रास मंडल में गोपियों के द्वारा घिरे हुए विराजित थे। तत्कुणन घंटिक नूपुरा स्फुरन मणिमय कटक कटिसूत्र के योर हार किरीट कुंडल योर रूपरी कमल पत्र नीलाम्बरो विमल कमल पत्राक्षो यक्षी भी यक्षराडे गोपी फिर गोपराट रास मंडले रेजे। तब वरुण के द्वारा भेजी हुई वारुणी देवी वृक्षों के कोटरों से प्रकट होकर बहने लगी और उस सुगंध से सारा वन सुगंधमय हो गया। मधु के लोफ में मधुकर मधुर गुंजार करने लगे। वारुणी पान से मद हेबल बलदेव जी के अंग प्रेमावेश से चंचल हो उठे। तब लीला विहार के श्रम के कारण जल कण की भांति पसीने की बूंदें उनके मुख पर प्रकट हो गईं। जब विहार करते हैं तो श्रम की बूंदें उन्होंने कपोलों पर रचित चित्रकारी को धो दिया। उनके गालों में जो चित्रकारी हुई थी वो धुल गई, पसीने की बूंदें आ गई। तब गजराज किसी चाल वाले और ऐरावत की सूर्य के समान विशाल भुजाओं वाले बलदेव जी गोपियों के साथ वैसी क्रीड़ा करने लगे जैसे उन्मत्त मातंग हथिनियों के साथ क्रीड़ा करता है। उनके सिंह जैसे कंधे पर हल और हाथ में मूसल शोभित था। करोड़ों करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की प्रभा के समान उनका तेज फैल रहा था। देदीप्यमान रत्नों के मंजीर चंचल नूपुर मधुर शब्द करती हुई स्वर्णमय किंकिनी कड़े ताटंक हार श्रीकंठ अंगूठियां और सिर पर दिव्य मणिभूषण शोभित थे। काली नागिन को ले जाने वाली उनकी अलकावली और कपोलों पर चित्रित पत्रावलियों से सुशोभित गोप सुंदरियों के साथ अखिल भुवनपति बलदेव जी वहां विराजित होकर रास विहार करने लगे। अथ वरुण प्रेषिता वारुणी देवी पुष्पभार गंधिलोभिः मिलिंद नादित वृक्ष कोटरेभ्यः पतंती सर्वतो वनम सुरभि चकार तत्पान मद भेवला कमल विशालताम्राक्षो मकरध्वज वेश चलन धुर्यांग भंगो विहार खेद प्रस्वेदाम्बुकणैर गलत गंड स्थल पत्र भंगो गजेन्द्र गतिर गजेन्द्र सुंडा दंड समदोर दंड मंडितो गजीभिर गजराज इन्वो एवोन्मत्तः सिंहासने न्यस्तहलो मुसल पाणि कोटिन्द पूर्ण मंडल संकासः प्रोद गमत रत्न मंजीर प्रचल नूपुर प्रकणत कनक किंकिणी भी कंकण स्फुरत तार टंक पुरट हार श्रीकंठांगुली शिरोमणि भी प्रविडम विनी कृत सर्पिणी श्याम वेणी कुंतल ललित गंडस्थल पत्राविलि भी सुंदरी भीर भगवान भुवनेश्वरो विभ्राजमानो विरराज अथ चरे में। फिर यमुना के किनारे वन में विचरण और क्रीड़ा करते हुए बलदेव जी के मुख कमल पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। तब उन्होंने स्नान और जल क्रीड़ा करने के लिए दूर से ही यमुना जी को पुकारा, परंतु वे नहीं आईं। फिर तो बलदेव जी ने क्रोध में भरकर हल्की नोक से यमुना जी को खींच लिया और कहा, अथवाव कालिंदी कूल कांतार पर्यटन विहार परिश्रमो स्वेद बिंदु व्याप्त मुखार बिंद स्नानार्थम जल क्रीड़ार्थम यमुना दूरात आजुहाव ततस्तुनागताम तटिनीम हलाग्रेण कुपितो विचकर्ष इति होवाच च। आज मैंने तुमको बुलाया किंतु तुम मेरा अपमान करके नहीं आई। कौन कह रहे हैं? बलदेव जी कह रहे हैं, आज मैंने तुमको बुलाया, पहली बार बुलाया और पहली बार ही अवज्ञा की। आज मैंने तुमको बुलाया किंतु तुम मेरा अपमान करके नहीं आई। तुम मनमाना बर्ताव करने वाली हो, अच्छा भी इस मूसल के द्वारा मैं तुम्हारे 100 टुकड़े कर देता हूँ। यमुना जी को जब बलराम जी ने इस प्रकार डांटा तभी अत्यंत भयभीत होकर उनके चरण कमलों पर गिर पड़ी और बोली, अद्य माम अवज्ञाय नायासी मया हूतापि मुसलेन त्वाम कामचारिणीम सतथा नेश एवं निर्भर्तता सा भूरी भीता यमुना चकिता तत्पादयो पतितो वाच। हे लोकाभिराम राम, हे संकर्षण, हे बलभद्र, हे महाबाहु, मैं आपके असीम बल पराक्रम को नहीं जानती थी। आपके ही मस्तक पर सारा भूमंडल सरसों के समान पड़ा रहता है। पूरा भूमंडल आपके मस्तक पर कैसे पड़ा हुआ है? सरसों के समान। आपके सिर में सरसों अगर पड़ा हो तो आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। आपके सिर पर जो है पूरा भूमंडल सरसों के दाने के समान पड़ा रहता है। मैं आपके परम प्रभाव से अनभिज्ञ हूँ और आपकी शरण में आई हूँ। आप भक्त वत्सल हैं, मुझे छोड़ दीजिए। राम राम संकर्षण बलभद्र महाबाहो तव परम विक्रमम न जाने यस्य कस्मिन् मूर्धनि सरसवत् सर्वं भूखंड मंडलम दृश्यते तस्य तव परम अनुभावम अजानंतीं प्रपन्नां मां मोक्तुं योग्योऽसि त्वं भक्तवत्सलोऽसि। इस प्रकार प्रार्थना करने पर गोपराज बलभद्र जी ने यमुना को छोड़ दिया और हथिनियों के साथ गजराज की भांति वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। तब उनके यमुना से बाहर निकलने पर यमुना जी ने आकर उन्हें बहुत से नील वस्त्र दिए, क्योंकि वे नील वस्त्र, नीले रंग के वस्त्र ही धारण करते हैं। तो यमुना जी ने उनको बहुत से नील वस्त्र दिए और स्वर्ण और रत्नों के आभूषण भेंट किए। हे दुर्योधन, बलदेव जी ने उन सब वस्त्राभूषणों को पृथक पृथक गोपियों में बांट दिया, प्रसादी वस्त्र दे दिए और स्वयं नीलांबर और नवीन रत्नों से निर्मित स्वर्णमाला को धारण करके ऐरावत की भांति विराजमान हो गए। ऐरावत हाथी इंद्र का है। ऐरावत हाथी का रंग भी चंद्रमा के समान है। बलदेव जी का भी रंग चंद्रमा के समान है, इसलिए ऐरावत हाथी की तुलना की गई। ये सामान्य हाथी तो काले रंग के होते हैं, तो बलदेव जी से तुलना सामान्य हाथियों की नहीं जा सकती। ऐरावत हाथी जो है चंद्रमा के समान चमकीला सफ़ेद रंग है, ऐरावत हाथी के समान है। इत्येवं याचितो बलभद्रो यमुनां दतो यमुञ्चत् पुनः करेणो भी करीव गोपी भी गोपराट जले विजगाहे पुनर्जलाद् विनिर्गत्य तरस्थाय बलभद्राय सहसा यमुना चोपायनम नीलांबराणि हेमरत्नमय भूषणानि दिव्यानि च ततो हवावतानि गोपी युथाय पृथक पृथक विभज्य स्वयं नीलांबरे वसित्वा कांचनी मालां नवरत्नमयीं धृत्वा महेन्द्रो वारणेन्द्र एव बलभद्रो विरेजे। हे राजन, इस प्रकार क्रीड़ारत यादव श्रेष्ठ बलराम जी ने वसंत ऋतु की रात्रियों को व्यतीत किया, जिस प्रकार हस्तिनापुर को देखकर भगवान बलदेव के पराक्रम का दर्शन होता है। हस्तिनापुर में भी बलदेव जी ने क्या किया था? हस्तिनापुर को भी गंगा जी में डुबाने के लिए खींचा था, तो अभी भी हस्तिनापुर झुका हुआ है, गंगा जी की तरफ झुका हुआ है। तो हस्तिनापुर भी जो है बलदेव जी का प्रभाव अभी भी दिखाता है। जिस प्रकार हस्तिनापुर को देखने पर भगवान बलदेव जी के पराक्रम का दर्शन होता है, उसी प्रकार आज तक यमुना जी टेढ़े मार्ग से प्रवाहित होती हुई उनकी शक्ति को सूचित कर रही हैं। वहाँ पर अभी भी यमुना जी का रास्ता टेढ़ा है। वो स्थान कौन सा है? रामघाट, रामघाट स्थान है। अभी यमुना जी वहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी यमुना जी दूर हैं, लेकिन तो भी रास्ता टेढ़ा है यमुना जी का। भगवान बलदेव के इस रासलीला के प्रसंग को जो मुन सुनता अथवा सुनाता है, सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं? नकल नहीं करना है, ठीक है? सुनता है, सुनाता है, है ना? नकल नहीं करना है। भगवान बलदेव जी की श्रीला रासलीला प्रसंग को जो मनुष्य सुनता अथवा सुनाता है, उस सारे पापों से मुक्त होकर परम आनंद पद को प्राप्त होता है। इत्थं कौरवेन्द्र यादवेन्द्रस्य रभतः रमतः सर्वा वासन्तकी निशाविदिहिता बभूव भगवतो बलभद्रस्य हस्तिनापुरम एव वीर्यसूचयतीव यद्यापि च कृष्णवर्त्मना यमुना भाति इमां रामस्य राजकथां यः शृणोति श्रावयति च स सर्व पाप पटलं छित्त्वा तस्य परस्परमानन्दपदं प्रतियाति किं भूया श्रोतुमिच्छसि। हरि बोल। तो हमने चार त्योहारों की कथाएं सुनाई हैं, और अभी हमारे पास 2-3 मिनट का समय है। आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है या कोई प्रश्न है? हाँ जी बोलिए। चालू कर दिया मैंने।
भगवान बलराम की दिव्य कथा को दुर्योधन ने भी सुना था, उसने हृदय छू
कर। इनका प्रश्न है कि बलदेव जी की कथा को बलदेव दुर्योधन ने सुना तो भी उसके हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण से विमुख हो या कृष्ण के भक्तों से विमुख हो तो बलदेव जी भी रक्षा नहीं करेंगे। आप समझे? क्योंकि दुर्योधन जो है कृष्ण के भक्त पांडवों से द्वेष करता है, अपना द्वेष नहीं छोड़ना चाहता है, है ना? तो कृष्ण तो उसके पक्ष में कभी होंगे ही नहीं, और बलदेव जी भी रक्षा नहीं करेंगे, कोई भी रक्षा नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति वैष्णवों से विमुख होता है, वैष्णवों का अपराध करता है, तो कृष्ण भी रक्षा नहीं करेंगे उसकी, और बलदेव जी भी रक्षा नहीं करेंगे, और कोई रक्षा नहीं करेगा, चाहे जितना भी आप प्रसन्न कर लीजिए किसी को भी। ठीक है, ये शिक्षा मिलती है। हाँ जी। नहीं, जो मैंने सुनाई ये वास्तव में बसंत ऋतु की रासलीला नहीं है, लेकिन चूंकि बसंत ऋतु की रासलीला हमें मिली नहीं इसलिए मैंने एक सुना दिया, लेकिन वास्तव में बसंत ऋतु की नहीं है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये जो है शरद पूर्णिमा की। और कोई अक्षरधाम? हाँ, इसमें अक्षरधाम बताया गया है। अक्षरधाम, अक्षरधाम भी यहाँ है। हाँ जी। हाँ मधुमंगल कुछ बोल रहे हैं? हाँ, इसी संबंध में बोल रहे हैं। अक्षरधाम, ठीक है बोलिए। हाँ 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 बोलिए 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 जरूर।
हमने सुना है जैसे सबने कामदेव के विषय में कि कामदेव ब्रह्मा जी को भी विचलित कर देते हैं, जो भागवत का वर्णन आता है, और शिव जी को भी विचलित कर देते हैं। कामदेव तो काम हमेशा करो दिशा बोलो दी बोलते थे। कामदेव का बड़ा बड़ा हो गया था इस बात से कि हम किसी को भी बड़े बड़े देवताओं को भी मतलब कि ब्रह्मा जी और शिव जी को भी जो है विचलित कर सकते। फिर उस समय पे कामदेव ने विचार किया कि अब अगर मैं विष्णु को भी विचलित कर दूंगा तो मैं इन लोगों में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो जाऊंगा, कि अगर मैं विष्णु को भी कंट्रोल कर दूंगा तो विचार करने लगे कहाँ जा रहे हैं। विष्णु तो हमेशा बड़ी सुरक्षित स्थिति में रहते हैं, कैसे उनको डिस्टर्ब किया जाएगा। कि ये आज का दिन आया जो बसंत पूर्णिमा तो मौसम खराब हो गया है, गाड़ी पोल्यूशन से सब मौसम गड़बड़ हो गया। देखिए बसंत का मौसम सबसे अद्भुत मौसम होता है और इसमें आदमी के काम वास्तव भी जल्दी हो चुकी है। इसी कारण से वो सोचने लगा कि ये समय सबसे बेस्ट है। वो जब गोवर्धन में जाके देखा कि एक तो बसंत का मौसम रातों के लिए हवा चल रही है और गोवर्धन में कृष्ण जो है चारों तरफ एक ही पुरुष और सुंदर तीनों लोगों को सबसे ज्यादा सुंदर वो बालिकाओं के साथ वहां पर मिला रहे। तो कामदेव ने विचार किया कि ये सबसे बेस्ट समय है, यहाँ पर हम इनको सबसे अच्छे से विचित कर सकते। तो उन्होंने सुना तो था कृष्ण का प्रार्थना, उसको पूछने के लिए उन्होंने क्या किया, एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए, बहुत ऊंचे चढ़ गए। ये विचार करके ही छुपके वाला बना, छुपके अपने पुष्प बाण चलाऊंगा कृष्ण जी उतर, और फिर कृष्ण फंस गए। तो जब पेड़ों के ऊपर चढ़ गया उसने क्या देखा कि श्री कृष्ण की शोभा जो है चारों तरफ जो स्त्रियां हैं वो ऐसे लग रही है जैसे कि स्वर्ण के बीच में नीलमणि। और जब उन्होंने कृष्ण की ओर देखा, कृष्ण ने जैसे ही अपनी आंखों को घुमाए तो उनको देखते हैं उनकी भूमि को देख के इतने आकर्षित हो गए कि कृष्ण के बाद तो क्या करेंगे अपने बाणों से, वहां से मूर्छित होकर पेड़ से नीचे झुक गए।
हरि बोल हरि बोल।
सारी गोपियां डर गई कि हम अचानक ऐसे तो नहीं आ गए इतना अद्भुत। कृष्ण बोले चिंता मत करो, विजय करने के लिए आया था। तो फिर किसी बात से हमें स्मरण आया कि श्रीमद् भागवत में कपिल देव जी वर्णन करते हैं कि हाथ जो हासम है नमनता किल लोकति शोका शुषाद चोषण नमनता सम्मोहन नया दिन अचेतों निज माया जस्य भूमंड नाम दानव का जस्य। श्री कृष्ण अपने ओहों का रचते ही अपने अंतरंग की शक्ति से जिससे कि कामदेव जो उनके भक्तों को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं वो मूर्छित होकर पीछे हो जाए। इसलिए वहाँ पर वर्णन भी करते हैं कि भगवान कृष्ण की बहुत चरणों पर ध्यान लगाते हैं कि कामदेव जो